अध्याय 9 चेले क्या करते हैं। इस बात से आपको आश्चर्य होगा कि यीशु ने उनके चेलों को बहुत सारे कार्यों को करने की आज्ञा नहीं दी थी। परमेश्वर को और दूसरे लोगों को प्रेम करने का उनका दर्शन जटिल नहीं था, पर उन्होंने उनके चेलों को जो कार्य करने की आज्ञा दी थी वे कार्य गहन और जीवन को बदलने वाले कार्य थे। चेले होने के सबसे महत्व के बिंदु से हम उसकी शुरुआत करेंगे। चेले परमेश्वर से, अपने पड़ोसी से और एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। हम जानते हैं कि यीशु ने परमेश्वर पिता को समर्पित जीवन का सारांश कैसे दिया है। सबसे बड़ी आज्ञा थी कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। मत्ती 22:37-40। यीशु ने इस प्रकार किया। यीशु ने अपने चेलों को कहा कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूं। यूहन्ना 14:31। यीशु ने कैसे बताया कि वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? उन्होंने परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को माना। उन्होंने अपने लिए परमेश्वर पिता की योजना को पूरा किया। उन्होंने ऐसा भी कहा कि जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यूहन्ना 15:9। यीशु ने अपने चेलों को ऐसा ही करने को कहा, और दो सबसे बड़ी आज्ञाएं यही बात को बताती है। यीशु ने खुद का उदाहरण देते हुए अपने चेलों से कहा कि जैसे उन्होंने अपने चेलों से प्रेम रखा है वैसे ही चेलों को एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। जब चेलों ने ऐसा किया तब उन्होंने यीशु की आज्ञा मानी और परमेश्वर को प्रसन्न किया। यीशु ने उनसे कहा कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना 15:13-17। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना 13:34-35। परमेश्वर से और एक दूसरे से प्रेम रखना तो यीशु के मत से उनके चेलों के अति आवश्यक और बुनियादी चिन्ह है। यीशु ने यह दो आज्ञाओं को कोई भी प्रकार से विरोधाभासी रीत से नहीं देखी। वो एक मानसिक तनाव नहीं पर एक ही सिक्के के दो पहलू जैसी है। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। पर हम कैसे लोगों से प्रेम रखते हैं? प्रेम की यह सबसे बड़ी अभिव्यक्ति तो अपना प्राण देने की है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना 15:13। यीशु ने हमारे लिए ऐसा ही किया है। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:7-8। इस अंतिम अभिव्यक्ति के तौर पर मैं पहले कुरंथियों 13:4-7 के अलावा दूसरी कोई भी अच्छी व्याख्या के विषय में सोच नहीं सकता। उसमें प्रेम के विषय में जो कहने की जरूरत है वो सब कहा गया है। उस शास्त्र भाग के लक्षण इस प्रकार है। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम परोपकारी है, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम सत्य से आनंदित होता है, प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम प्रेम सब बातों की आशा रखता है, प्रेम सब बातें सह लेता है। आप वैलेंटाइन डे या कोई रोमांचक शैली के कार्ड में बताई हुई सूची के उन बिंदुओं को देख पाएंगे। यह सत्य है कि हमारे पति या पत्नी से, या तो जो हमारे पति या पत्नी बनेंगे ऐसी आशा रखते हैं, उनसे प्रेम करना चाहिए। पर वास्तव में तो पहला कुरंथियो 13:4-7 का शास्त्र भाग उस प्रेम के विषय में बात नहीं करता है। हमें सामान्य रीति से हरेक लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें ऐसा प्रेम असंगत लगे फिर भी ऐसा करना चाहिए, परमेश्वर वो देखेंगे और प्रसन्न होंगे। दूसरे कुछ विधानों को इस सूची के दूसरे विधानों के संदर्भ में पढ़ना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है उन शब्दों का, प्रेम सत्य से आनंदित होता है, इन शब्दों के साथ संतुलन होना ही चाहिए। प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है उन शब्दों को अलग करके हम ऐसी समीक्षा नहीं कर सकते कि प्रेम गलत और दुष्ट शिक्षा की भी प्रतीति करता है। इसी प्रकार प्रेम सब बातों की आशा रखता है, यह शब्द किसी भी व्यक्ति के लिए बुरी आशा रखने की बात नहीं बताते, पर सामान्य तौर पर इस सूची को समझना सरल है और ऐसा दैनिक जीवन जीना एक चुनौती है। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं दूसरा एक बिंदु बताना चाहता हूं। शिष्यता के अर्थ में जिसका समावेश होता है वो तो यीशु के उस प्रथम आज्ञा पर आधारित है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना 13:34-35। एक दूसरे से प्रेम रखना, लोगों से प्रेम करना, यह तो चेले जो दूसरे कार्यों को करते हैं, यानी कि प्रार्थना, उपवास, भेंट देना, संगति करना इत्यादि, उन सब का केंद्र बिंदु है। यह सभी बातें बुनियादी आज्ञा की अभिव्यक्ति है। चेले एक दूसरे की संभाल रखते हैं। शिष्यता का यह मूल तत्व एक दूसरे से प्रेम करने के कार्य की प्रगति है। एक दूसरे की संभाल रखने का अर्थ है समुदाय में रहकर एक दूसरे की संभाल करना। पिंतेकुस्त के दिन के बाद प्रेरितों के काम 2:1-4, जब बहुत लोगों ने सुसमाचार पर विश्वास किया तब वे कलिसिया के नाम से पहचाने जाने वाले समुदाय का हिस्सा बने, उनकी स्थिति में यरूशलेम की स्थानिक कलिसिया। नए नियम में कलिसिया शब्द कोई भवन या अधिकृत संस्था को नहीं बताता। नया नियम हमें कहता है कि यरूशलेम के कलिसिया उनकी गरीबी के लिए प्रसिद्ध थी। उनके पास इकट्ठा होने के लिए कोई भवन नहीं था और वहां सैकड़ों नए विश्वासी थे। प्रेरितों के काम 2:41-47, 5:14। उनका कोई कानूनी पद नहीं था, उसका क्या अर्थ है? तो फिर यीशु के अनुयायी उनका पोषण कैसे करते थे? उन्होंने एक दृढ़ और आत्मबलिदान करने वाले समुदाय की रचना की थी। कई बार आधुनिक कलिसियाओं में हम खेलकूद के कोई जूत के प्रशंसकों को या कोई अच्छे काम को आपस में समर्थन देने वाले समर्थकों के जैसे एक हेतु रखने वाले जूत के लिए समुदाय शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसी समझ नए नियम के समुदाय के लिए अधूरी है। नए नियम की कलिसिया का समुदाय तो एक परिवार था, आपस में एक हेतु के साथ जुड़े हुए लोग और परिवार में क्या भिन्नता है? क्या आप किसी के पास ऐसी अपेक्षा रखेंगे कि आप एक बेसबॉल टीम को पसंद करते हैं इसलिए वे आपको पैसे दें, या तो आपका किराया दें, या तो आपको किराने का सामान खरीद कर दें? क्या आप कोई व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा रखेंगे कि उन्होंने जिसे वोट दिया है उसी व्यक्ति को आपने भी वोट दिया है, या तो आप दोनों ने एक ही काम के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए 5000 मीटर की दौड़ में भाग लिया है इसलिए वो व्यक्ति आपको नौकरी देगा या आपकी कार को ठीक कर देगा? नहीं, पर आप परिवार के सदस्यों से मदद की अपेक्षा रखेंगे। परिवारजनों को या तो खून का रिश्ता हो, ऐसे संबंधियों को ऐसे कार्य करना चाहिए। शुरुआत की कलिसिया ऐसी ही थी, यहां उसकी एक झलक है। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे रहते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रेरितों के काम 2:41-47। यह शास्त्र भाग साम्यवाद की बात नहीं कर रहा है, यह कोई राजकीय पद्धति की भी बात नहीं कर रहा है। इस शास्त्र भाग में आप जिस वर्तन को देखते हो ऐसा वर्तन करने के लिए उन्हें कोई सरकार अगुवाई नहीं दे रही या जबरदस्ती भी नहीं कर रही। यह पूर्ण रीति से स्वैच्छिक वर्तन था। यह तो एक स्वस्थ सामान्य परिवार के वर्तन को दर्शाता है। परिवार उसके सदस्यों की जरूरतों को पूरा करता था। इस समुदाय में सैकड़ों लोग रहते थे। यह तो शिष्यता के वर्तन का चित्र है। वे समुदाय का पोषण करते हैं। वे एक परिवार के जैसे एक दूसरे से प्रेम रखते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक दूसरे से संसाधन बांटते हैं। कुछ विश्वासियों की जरूरतें पैसे की थी और कुछ विश्वासियों की समय की या सेवा की या तो कौशल की थी। बुनियादी तौर पर देखें तो समुदाय उसके सदस्यों की जरूरत के अनुसार कार्य करता है। आप शायद ऐसा सोचे कि इस समुदाय में तो बहुत लोग थे तो फिर वे एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे। विश्वासी लोग मंदिर में इकट्ठा होते थे, इससे यहूदी अगुओं के साथ संघर्ष होता था, पर सुसमाचार के प्रचार के लिए यह एक अच्छा स्थान था और वे लोग घर घर इकट्ठा होते थे। प्रेरितों के काम 2:46-5:42। इसका अर्थ यह है कि यरूशलेम की कलीसिया जो एक मूल मसीही समुदाय था वो वास्तव में तो छोटे छोटे समुदायों का एक समाज था। समुदायों में कुछ लोग नए विश्वासियों को मदद करते थे और उनका स्वीकार करते थे। ऐसे समुदाय नए विश्वासियों के लिए प्रवेश द्वार थे। मसीही समुदाय तो सुसमाचार का अंगीकार करने वाले लोगों का समुदाय था। हर एक समुदाय उसके सदस्यों को चेले बनाने में सहभागी हुआ था। यह कैसा लगता है? सामान्य रीति से जो प्रथम कार्य हुआ वो तो नए विश्वासियों का बपतिस्मा था। प्रेरितों के काम 2:41-8:12-13-10:47-48 16:15। बपतिस्मा तो यीशु और उनके चेलों के साथ जो पहचान थी उसकी उद्घोषणा का कार्य था। दूसरे गवाह यानी कि दूसरे समुदाय के सदस्य उसका अवलोकन करते थे। यह बहुत बातों को दर्शाता है। उसमें यीशु ने क्रूस पर किए हुए कार्य की वजह से आपके पाप क्षमा किए गए हैं और अब आपके पास नया जीवन है, इस बात का समावेश होता है। रोमियों 6:1-4, 2 कुरिन्थियों 5:17। समुदाय के जीवन में प्रवेश करने का प्रथम कदम तो बपतिस्मा था। जिन व्यक्तियों का बपतिस्मा होता था उन्होंने यीशु पर विश्वास करने का अंगीकार किया था और गवाहों ने उनके समर्पण का स्वीकार किया था। जब विश्वासियों के समुदाय इकट्ठा होते हैं तब वे जरूरतों को खोज लेते हैं। अगर वे उनके छोटे समुदायों में जो लोग हैं उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं तो वे उनकी जरूरतों को पूरी करते हैं। उससे जिन विश्वासियों की जरूरतें पूरी की गई थी उन्हें यीशु का अनुसरण करने में सहायता प्राप्त हुई थी। जिनकी सहायता की गई थी वे यीशु जैसा जीवन कैसे जी सकते हैं उस बात को सीख रहे थे। जब छोटा समुदाय बड़ी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता था तब विश्वासियों का विस्तृत परिवार उनको सहायता करता था। सेवा के इस विस्तृत संकलन के लिए प्रेरित जो यीशु के मूल चेले थे और यरूशलेम की वृद्धि प्राप्त कर रही कलीसिया के अगुवे थे उन्होंने पूरे समुदाय में सुधि लेने के लिए सहायकों को नियुक्त किए थे। प्रेरितों के काम 6:1-7। इस संदर्भ में शुरुआत की कलीसियाएं प्रभु भोज करने के लिए पर्व का आयोजन करती थी। 1 कुरिन्थियों 11:17-34। प्रभु भोज तो यीशु ने जो अंतिम भोजन किया था उसे याद करने का उत्सव था। उस भोजन के समय यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि हर एक लोगों के लिए उनका शरीर तोड़ा जाएगा और उनका रक्त बहाया जाएगा। यीशु ने उनसे कहा था कि उनके जीवन का बलिदान तो नए नियम की परिपूर्णता है। लूका 22:20। प्रभु भोज के पर्व का वर्णन वो ही बात बताता है। पहला कुरिन्थियों 11:25, प्रभु भोज तो यीशु ने जो कार्य किया था उसे याद करने की रीत थी। यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पहला कुरिन्थियों 11:24-25, वो तो विश्वासियों के समुदाय में जो गरीब थे उनकी सुधि लेने की भी रीत थी। चेलों की संगति। संगति शब्द तो नए नियम का शब्द है जो विश्वासी समुदाय की प्रवृत्तियों को बताता है। एक दूसरे की संभाल रखना तो बाइबिल आधारित संगति का भाग है, क्योंकि जब विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं तब उनकी जरूरतों की परख करके उसे पूरी की जाती है। ऐसा कहकर चेले जो दूसरा कार्य करते हैं उसके विषय में बात करने के लिए हमें संगति की संक्षिप्त में चर्चा करने की जरूरत है। अधिकांश मसीही लोग संगति को एक दूसरे के साथ आनंद करने की प्रवृत्तियों के समान गिनते हैं। हाँ, साथ में मिलकर आनंद की प्रवृत्ति करने से संबंध मजबूत होते हैं। एक दूसरे की संगति का आनंद प्राप्त करने से लोगों के संबंधों में आत्मीयता की वृद्धि होती है, पर वास्तविकता में चेले बनने की बात में यह संगति बाइबिल आधारित नहीं है। साथ में मिलकर आनंद करना और बाइबिल आधारित संगति करना, इन दो बातों में भिन्नता यह है कि सिर्फ एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना ही संगति नहीं है। बाइबिल आधारित संगति तो जानबूझकर किया गया कार्य है। संगति करने का उद्देश्य तो यीशु की उपस्थिति में एक मन के होने का है, जिससे हम में यीशु का मन हो। दूसरे शब्दों में कहे तो संगति का उद्देश्य तो शिष्यता है। फिलिपियों में बताए गए कुछ पद इस विचार को प्रकट करते हैं। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। फिलिपियों 1:27। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपियों 2:1-5। मसीह का मन होना और विश्वासियों के समुदाय के तौर पर एक मनसा रखने का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ यह है कि सब लोग हरेक विवरण पर विश्वास करते हैं? नहीं, बाइबिल एकता की बात करता है, एक रूपता की नहीं। एक मनसा रखना, इस बात को समझने की अच्छी रीत यह है कि समुदाय के हरेक सदस्य यीशु के जैसा बनने के एक ही उद्देश्य को पूरा करते हैं। उसका उद्देश्य मसीह के जैसा कार्य करना और विश्वासियों के समुदाय के तौर पर साथ में रहने के लिए सभी बातों में सहमत होना नहीं, पर सुसंगति रखना या तो अनुकूल होना है। शुरुआत में विश्वास करने वाले हरेक समुदाय इस उद्देश्य को पूरा करने के बहुत सारे कार्य करते थे। वे प्रार्थना करते थे, स्तुति आराधना करते थे और वचनों का अभ्यास करते थे। चेले व्यक्तिगत रीत से और साथ में मिलकर यह सब कार्य करते हैं। मैं इन हरेक कार्यों के विषय में बात करना चाहता हूं। चेले प्रार्थना करते हैं। सामान्य अर्थ के तौर पर प्रार्थना तो परमेश्वर के साथ बातचीत है, पर उसमें एक विचार ऐसा भी है कि क्या परमेश्वर पहले से नहीं जानते कि हम क्या सोच रहे हैं? हाँ, वे जानते हैं, तो फिर क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? परमेश्वर को माहिती देने के लिए प्रार्थना नहीं की जाती है, पर प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को और दूसरे लोगों को बताते हैं कि हम परमेश्वर पर आधार रखते हैं। प्रार्थना करने के द्वारा हम इस बात को प्रकट करते हैं कि हम खुद पर भरोसा नहीं रखते हैं और खुद उपाय खोज नहीं सकते हैं। प्रार्थना तो परमेश्वर पर हमारा आधार और सिर्फ परमेश्वर में ही हमारी सलामती है, इस बात को बताती है। इस रीति से देखे तो प्रार्थना परमेश्वर की भक्ति है। समूह में करने वाली प्रार्थनाओं को भी यही अर्थ लागू होता है। लूका 11:1 में यीशु के चेलों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और उसके चेलों के विषय में बात करते हुए यीशु को प्रश्न पूछा था कि हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। लुका 11:1-4, मत्ती 6:9-15, लुका 18:9-14। एक महत्व की बात देखना जरूरी है कि यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करते समय कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ऐसा नहीं कहा था, पर यीशु ने उनसे इस रीति से प्रार्थना करो ऐसा कहा था, मत्ती 6:9। यीशु ने उन्हें नमूना दिया था। परमेश्वर के साथ बात करने के लिए हमें कोई सूत्रों की या खास शब्दों की जरूरत नहीं। हम परमेश्वर के साथ सामान्य रीति से बात कर सकते हैं। दिखावा करने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, लूका 18:9-14। यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई थी उसमें हम देखते हैं कि जिस प्रार्थना की परमेश्वर को पहले से जानकारी नहीं है ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना तो परमेश्वर के ज्ञान में जो रिक्त स्थान है उसे भरने का कार्य नहीं है, परंतु यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई उस प्रार्थना में तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये शब्द तो परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर के लिए सम्मान से भरपूर है। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, ये शब्द परमेश्वर के प्रति हमारी अधीनता को दर्शाते हैं। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, ये शब्द माफी को दर्शाते हैं। और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, ये शब्द परीक्षा और बुराई से छुटकारे को दर्शाते हैं। प्रार्थना की रचना तो हमारे जीवनों पर परमेश्वर की प्रभुता का अंगीकार करने के लिए और परमेश्वर पर आधार रखने के हमारे रवैये का स्वीकार करने के लिए करनी है। बाइबिल व्यक्तिगत और सामूहिक प्रार्थनाओं से भरा है। अगर आप उसे पढ़े तो आप सीखेंगे कि प्रार्थना के द्वारा हम हमारी भावनाओं को परमेश्वर के आगे उंडेल सकते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तब परमेश्वर उसके विषय में सीखते नहीं है, पर हम परमेश्वर के प्रति समर्पित होने के विषय में परमेश्वर अच्छे हैं और श्रेष्ठ बातों को जानते हैं उस पर विश्वास करने के विषय में और परमेश्वर की सहाय प्राप्त करने के लिए विनती करने के विषय में सीखते हैं। यीशु ने कहा कि परमेश्वर सच में उनकी इच्छा के विस्तृत संदर्भ के अनुसार उत्तर देंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर के उत्तर हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होंगे, पर परमेश्वर जानते हैं कि हरेक मनुष्य के अनुभव और वर्तन में क्या चल रहा है, इसलिए वे अपनी बड़ी योजना के अनुसार कार्य करते हैं। परमेश्वर अनपेक्षित रीति से उत्तर दे सकते हैं। बाइबिल आधारित प्रार्थनाएं स्वकेंद्रित भी नहीं है, उसमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने का और दूसरे लोगों पर परमेश्वर की दया हो उसके लिए विनती करने के उद्देश्य का समावेश होता है। पौलुस ने जिन्हें पत्र लिखे उन लोगों का वो उसकी प्रार्थनाओं में समावेश करता है। प्रार्थना तो हमेशा या तो अधिकांश तौर पर हमारी खुद की जरूरतों या मांग को ही नहीं बताती है। यीशु ने बार बार प्रार्थना की थी। यीशु ने सर्वदा प्रार्थना करने के विषय में जो शिक्षा दी थी उसका अनुसरण किया था। कुलुसियों 4:2-6, लुका 18:1-8। यीशु की सभी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला था और उन्हें यह स्वीकार भी था, क्योंकि वे तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की मनसा रखते थे, मत्ती 26:36-46। प्रार्थना के लिए इस महत्व की बात को याद रखना है। यीशु ने सिखाया कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर उसका उत्तर देते हैं, लुका 11:9-13। पर हम ऐसा नहीं मान सकते कि जब हम परमेश्वर को आधीन रहते हैं तो वे अपनी इच्छा के विरुद्ध हमारे इच्छा के अनुसार उत्तर देंगे, याकूब 4:3, पहला यूहन्ना 3:22-5:14। चेले उपवास करते हैं। कई पाठक शायद उपवास से अनजान होंगे। सामान्य रीति से उपवास करने का अर्थ है कि किसी बात से दूर रहना, भोजन न करने का उपवास। बाइबिल में कई बार हम ऐसे उपवासों के विषय में पढ़ते हैं। यीशु ने उपवास किए थे, मत्ती 4:2। यीशु ने ऐसी अपेक्षा नहीं रखी थी कि उनके चेले भी उनके इस नमूने का अनुसरण करें, और इसलिए यीशु ने उन्हें चेतावनी दी थी कि जब वे उपवास करें तब कपटियों के जैसे न हो, मत्ती 6:16-18। उपवास अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाने वाला कार्य नहीं है, पर परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाने वाला कार्य है। उपवास का अर्थ सिर्फ भोजन से दूर रहना नहीं है। अब जिन बातों से दूर रह सकते हो उन सभी का उपवास कर सकते हो। यीशु वजन कम करने की कोई रीत की सिफारिश नहीं कर रहे थे। यीशु ने उपवास किए और जब उपवास के विषय में बात की तब उनके मन में अलग बात थी। बाइबिल में उपवास के बहुत उदाहरण दिए गए हैं, पर वे उदाहरण कोई नियम नहीं है। पौलुस ने लिखा है कि शादीशुदा युगल प्रार्थना में लागू रहने के लिए जातीय संबंध से दूर रहने का उपवास कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 7:1-5। क्यों ऐसा करना चाहिए? पहला कुरिन्थियों 7:5 में पौलुस ने लिखा है कि शादीशुदा व्यक्ति एक दूसरे की सम्मति से थोड़े समय के लिए जातीय संबंध से दूर रहे, पर उसके साथ एक निर्देश भी देता है कि एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। उपवास तो प्रार्थना में ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोगी होने वाला आत्मिक कार्य है। यह कैसे उपयोगी होता है? शायद यह उदाहरण इस बात को समझने में उपयोगी होगा। अगर आप एक दिन के भोजन का उपवास रखने का निर्णय लेते हैं तो जब आपको भूख लगेगी तब आपको प्रार्थना करने का स्मरण होगा। उपवास तो आपको यह याद दिलाने वाला साधन है कि आपने प्रार्थना के निर्णय के साथ उपवास किया है। उपवास के विषय में विचार करने की दूसरी रीत, तो जो बात हमें प्रार्थना से दूर ले जाती है या तो सामान्य रीति से परमेश्वर के साथ हमारी यात्रा से हमें चलित करती है, उन बातों को जानने की विनती करनी है। इसका उत्तर शायद हमारा फोन, टीवी या कोई शौक हो सकता है। इन सभी बातों को अलग करके हम परमेश्वर और प्रार्थना पर मन लगा सकते हैं। शुरुआत की कलीसिया के समुदाय ने सामूहिक रीति से प्रार्थना में ध्यान देने के लिए उपवास किए थे। प्रेरितों के काम 13:1-3, 14:23। पुराने नियम में बताए गए सामूहिक तौर पर करने वाले उपवास हमें पाप के सामूहिक दुख और पश्चाताप को दर्शाते हैं। यिर्मयाह 36:6, 2:12। चेले भजन करते हैं। शायद आपको ऐसा लगेगा कि भजन करना क्या है, इसे समझना और उसकी व्याख्या करना सरल है। एक रीति से यह सही है और एक रीति से नहीं। कई बार हम कलीसिया में संगीत के साथ जो होता है उसे भजन समझते हैं। संगीत और गीत मसीही संगतियों का भाग होते हुए भी वे भजन नहीं है, खासकर बाइबिल जो व्याख्या करता है उसके अनुसार तो नहीं। इफिसियों 5:19, कुलुसियों 3:16। हमारी संस्कृति की दूसरी एक मंशा तो भजन का विचार आंतरिक रहस्यमय भावना के अनुभव के विषय में है, वो भी भजन नहीं। हम ऐसे कई शास्त्र भागों के विषय में विचार कर सकते हैं, पर मैं आपको ऐसे दो शास्त्र भाग बताना चाहता हूं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियों 12:1-2। यीशु ने सामरी स्त्री से कहा, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। यूहन्ना 4:23। हमने पवित्र जीवन जीने के विषय में चर्चा करते समय प्रथम वचन के विषय में आगे बात की है। यीशु के जैसा जीवन जियो, इस संसार के सदृश न बनो, यानी कि उसके मूल्यों और आत्मसंतोष के पीछे न जाओ। यह भजन है। सच्चा भजन तो हृदय के साथ जुड़ी हुई बात है। दूसरा शास्त्र भाग एक खास कारण की वजह से दिलचस्प है। यीशु ने सामरी स्त्री से कहा कि परमेश्वर उनकी आराधना करने वाले लोगों की इच्छा रखते हैं, इसलिए आराधना हमसे शुरू होने वाली बात नहीं है। हमें तो परमेश्वर की भलाई और प्रेम का प्रत्युत्तर देने का निमंत्रण दिया गया है। हम यह कैसे और कहां करेंगे वो अलग हो सकता है। हम व्यक्तिगत रीति से या तो संगीत के साथ, कलीसिया में या तो गिरजाघर के बाहर भी भजन कर सकते हैं। हम सबके सामने या तो दूसरे विश्वासियों के साथ संगति में भी यह कर सकते हैं। जब विश्वासी लोग संगति में इकट्ठा होते हैं, तब वे एक दूसरे से प्रेम रखने का और अच्छे काम करने का प्रोत्साहन देते हैं। इब्रानियों 10:24-25। दूसरे शब्दों में कहे तो वे एक दूसरे को आत्मिक भजन करने के लिए और यीशु का अनुसरण करने का प्रोत्साहन देते हैं। वे परमेश्वर की भलाई, प्रेम और उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रेरितों के काम 2:46-47। याकूब 5:13। स्तुति आराधना में गीत गाने का और संगीत का समावेश होता है। मत्ती 26:30। इफिसियों 5:19। कुलुसियों 3:16। पर भूल से यह दोनों बातों को पवित्र जीवन के साथ जोड़ी गई है। यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। फिलिप्पियों 1:10-11। हम इस वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि परमेश्वर के प्रति हमारी आत्मिक आराधना, भक्ति या सेवा स्वभावगत रीति से हमारी जीवन शैली के साथ जुड़ी हुई है। रोमियो 12:1-2। ये घर में या कलीसिया में प्राप्त होने वाला 30 मिनट का अनुभव नहीं है, पर यह तो परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शित होने वाला जीवन है। चेले उनके पापों का अंगीकार करते हैं और माफी प्राप्त करते हैं। चेले जब यीशु के साथ उनकी यात्रा की शुरुआत करते हैं, तब जो बातें होती है उनमें से एक बात यह है कि वे निष्फल होंगे। हम में से कोई भी यीशु के जैसा पाप रहित नहीं है। दूसरे कुरिन्थियों 5:12, पहला पत्रस 2:21-22, पहला यूहन्ना 3:5, और हम ऐसा बनने की आशा भी नहीं रख सकते हैं। बाइबिल इस बात में स्पष्ट है, चेलों ने पाप किया था। मरकुस 14:30-68-72। उनमें से एक चेले यूहन्ना ने उसकी पत्री में लिखा है कि पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। पहला यूहन्ना 1:7-10। वैसे यह जानना अद्भुत है कि परमेश्वर के परिवार में हमारी सदस्यता हमारे कार्यों पर आधारित नहीं। हम अच्छे कार्य करके परमेश्वर को हमारा कर्जदार नहीं बना सकते हैं। हम जो कोई अच्छे कार्यों के विषय में विचार कर सकते हैं, उनमें से एक भी कार्य के द्वारा हमें अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर हमारा कर्जदार नहीं। इसलिए हम में अच्छे कार्यों की कमी है, वो बात परमेश्वर को हमसे दूर नहीं करती है। जब हम पापी ही थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। रोमियो 5:8। इसलिए परिणाम स्वरूप हमें यह याद रखना चाहिए कि नैतिक परिपूर्णता की वजह से उद्धार प्राप्त नहीं किया जा सकता और नैतिक अपूर्णता की वजह से उसे खोया भी नहीं जा सकता। हम में जो अपूर्णता है, उसे ध्यान में रखकर यीशु के सच्चे चेले को परमेश्वर की भलाई और प्रेम पर लक्ष्य रखना चाहिए। यूहन्ना की पत्री में बताए गए शास्त्र भाग को फिर से पढ़ो। वो हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि हम निष्फल होंगे, तब हमें क्या करना है, यानी कि यीशु का अनुसरण करने में जो कमी है उसे दूर करनी है, या तो यीशु के जैसे बनने के लिए जो कार्य नहीं किए हैं उन कार्यों को करना है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों की क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम पाप करते हैं या तो निष्फल होते हैं, तब हमें इस बात को याद रखना ही है। अंगीकार का यही अर्थ है। हमें हमारे पापों को छिपाना नहीं है, उसके विषय में बहाने नहीं बनाने हैं या गलत तर्क नहीं करने हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमारे पापों का अंगीकार करें। क्यों? क्योंकि हमें दीन होने की जरूरत है। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि उद्धार तो यीशु ने हमारे लिए जो कार्य किए हैं उसकी वजह से प्राप्त होता है। हम उसे कमा नहीं सकते हैं। अंगीकार तो यीशु की वजह से हम परमेश्वर की संतान है इस बात का स्वीकार करता है। हम इस बात में निश्चित हो सकते हैं कि हमारा पाप हमें परमेश्वर से अलग नहीं करता है। हमारे पाप की वजह से हमें परमेश्वर के परिवार से निकाला नहीं जाएगा। रोमियो 8:31-39। हमने सुसमाचार का अंगीकार किया। उससे पहले परमेश्वर जानते हैं कि हम भूल करते हैं। इससे परमेश्वर को कोई आश्चर्य नहीं होता है। इससे हमारे प्रति परमेश्वर की भावना बदलती नहीं है। तो फिर स्वाभाविक तौर पर यह प्रश्न होता है कि क्यों हमें हमारे पापों की चिंता करनी चाहिए। नए नियम के चेलों ने लोगों में इस मनसा को देखा था। पौलुस ने रोम के मसीही लोगों को जो पत्री लिखी थी उसमें यह बात लिखी है। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है? इस बात पर ध्यान दे कि बाइबल ऐसा नहीं कहता है कि अगर आप पाप करेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं रखेंगे। पर बाइबल आत्मविनाश के संबंध में वापिस न जाने के विषय में बात करता है। इसलिए एक रीति से ऐसा कह सकते हैं कि हम पाप करेंगे नहीं, पर दूसरी रीति से ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें पाप को नजरअंदाज करना चाहिए। पौलुस इस संघर्ष को अच्छी रीति से जानता था। रोमियो 8:7-25। फिर भी वो यीशु का दृढ़ अनुयायी था। नया नियम हमारे मन में होने वाले युद्ध के विषय में हमें सावध करता है। हमारे हृदय यीशु के पीछे चलने की इच्छा रखते हैं, पर हम में जो अपूर्णता है वो जीवन जीने की हमारी शैली की प्रतिष्ठा और आत्मसंतोष की इच्छा रखती है। पहला पत्रस 2:11, याकूब 4:1। हम यीशु के पीछे चलते हैं तब यह विचार अच्छा है कि खुले मन से परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखें। मुख्य विचार तो यह है कि जब हम निष्फल होते हैं तब हमें तुरंत ही उसका अंगीकार करके परमेश्वर से प्राप्त होने वाली माफी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। हम परमेश्वर के भाई और बहन बन सके इसलिए जब हम पापी ही थे तब यीशु हमारे लिए मर गए। इसलिए हमें वफादारी पूर्वक परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। चेले बाइबिल का अध्ययन करते हैं। शुरुआत की कलीसिया में चेले प्रेरितों की शिक्षा को सुनते थे और वचनों का अध्ययन करते थे। पौलुस और दूसरे मिशनरियों प्रेरितों ने भी जब दूसरे क्षेत्रों में कलीसियाओं की शुरुआत की तब ऐसा ही किया था। प्रेरितों के काम 2:42, 4:2, 5:42, 17:10-11, 18:11, 20:20। नए नियम के समय में बाइबिल का अध्ययन करने की यह एक सामान्य रीति थी, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास उनका खुद का बाइबिल नहीं था। अधिकांश विश्वासी अनपढ़ थे। हम शिक्षित संस्कृति का भाग हैं और हमारे पास हमारा खुद का बाइबिल है। फिर भी हम समुदाय में रहकर बाइबिल सीखने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यीशु के पीछे चलने के लिए परमेश्वर के वचनों को सीखने की जरूरत है। हम कैसे पाप के विषय में यानी जो वर्तन और मनसा को छोड़ देना चाहिए उसके विषय में, और पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन के विषय में, यानी कि हमें कैसा वर्तन करना चाहिए उसके विषय में कैसे सीख सकते हैं। वचन हमें सिखाते हैं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। एफेसियों 4:22-24। जब हम सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के परिवार का भाग बनते हैं, तब पवित्र आत्मा हम में रहता है। 1 कुरिन्थियों 3:16-17, 6:19-20, 2 कुरिन्थियों 6:16, इफिसियों 2:22, और फलदायी जीवन जीने के लिए उपयोगी होता है। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। गलतियों 5:18-24। चेले अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को और उन वचनों के अनुसार जीना सीखते हैं। यीशु ने भी परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करके बताया कि वे परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। चेलों का समुदाय तो परमेश्वर को प्रेम करने में उपयोगी होने में महत्व का भाग है। इस समुदाय में हम बहुत वर्षों से यीशु का अनुसरण करने वाले परिपक्व विश्वासियों के संपर्क में आते हैं। जब उन्होंने पुराना मनुष्यत्व उतारकर नया मनुष्यत्व पहन लिया, तब उनका जीवन कैसे बदल गया उसके विषय में सीखते हैं। जब हम यीशु जैसे बनने के मार्ग पर चलने में संघर्ष करते हैं, तब उनके द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। वे हमें परमेश्वर के प्रेम और माफी को याद दिला सकते हैं। पाप से मुंह मोड़कर अच्छे कार्य करने के लिए हरेक मसीही व्यक्ति संघर्ष करता है। इस बात को वे जानते हैं। 1 यूहन्ना 1:5-10। प्रेरितों ने भी पाप से मुंह मोड़कर अच्छे कार्य करने के लिए संघर्ष किया था। रोमियों 7:7-25, गलतियों 2:11-14। जब हम यीशु जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं, तब समुदाय का अर्थ है जिम्मेदारी, सहानुभूति और प्रोत्साहन। चेले दुख उठाते हैं। यह मूल तत्व आपको आश्चर्य में डाल सकता है, पर नए नियम में यह स्पष्ट है। यीशु ने उनके चेलों से कहा था कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। यूहन्ना 15:18-20। ऐसे समयों पर ही विश्वास की वफादारी की परख होती है। हमें हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए उसके लिए हृदय के परिवर्तन के विषय में सीखना अलग बात है, और वास्तव में यीशु का अनुसरण करके उनके लिए दुख उठाना अलग बात है। प्रेरितों ने यीशु का अनुसरण करने के लिए दुख उठाया था। प्रेरितों के काम 5:41-9:16-21-13, 2 कुरिन्थियों 11:22-29। विश्वास को दृढ़ता से पकड़ के रखना नए नियम का विषय है। रोमियों 8:17-18, 2 कुरिन्थियों 1:3-7, फिलिप्पियों 1:27-30, 1 पत्रस 3:13-17। मुख्य 12 चेलों में से एक चेले पत्रस ने यीशु को दुख उठाते देखा था, और वो उसके विश्वास के लिए बंदीगृह में भी गया था। प्रेरितों के काम 12:1-19। उसने सताव के लिए तितर बितर हुए लोगों को लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। 1 पत्रस 2:20-23। दुख उठाने की बात हमें यह याद दिलाती है कि सुसमाचार हमें हमारे जीवन में सरलता और विश्रांति का वचन नहीं देता है, पर आने वाले जीवन में परमेश्वर के परिवार में अनंत जीवन का वचन देता है। यह जगत हमारा वास्तविक घर नहीं है। चेले और चेले बनाते हैं। चेले होने का सबसे महत्व का पहलू परमेश्वर से, हमारे पड़ोसी से और एक दूसरे से प्रेम करना है, पर चेला होने की सबसे महत्वपूर्ण बात तो दूसरे चेले बनाने की है। यीशु ने उनके स्वर्गारोहण से पहले उनके चेलों को यह आज्ञा दी थी। इसी वजह से इस आज्ञा को महान आदेश भी कहा जाता है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। मत्ती 28:18-20। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, यह कार्य बाइबल की एक बात का एक बड़ा भाग है। देशों को गुलाम बनाने वाले अलौकिक प्रधानों का अधिकार उनके पास से ले लिया गया है। परमेश्वर इच्छा रखते हैं कि उसमें बच्चे यानी कि उनके सहभागी और उनके पुत्र यीशु मसीह के चेले हर एक जगह पर सुसमाचार प्रकट करें। परमेश्वर संभव हो उतने ज्यादा लोगों को अपने परिवार के सदस्य बनाना चाहते हैं। उन लोगों को सुसमाचार प्रकट करना, सुसमाचार के अनुसार जीवन जीना और उनको परमेश्वर के परिवार में लाना और वो ही कार्य करना सिखाना ही हमारा कार्य है। हम कैसे इस कार्य को करेंगे? हमने कैसे सुसमाचार पर विश्वास किया, उस बात को उन्हें सिखाना है। यह बहुत सरल है। प्रथम तो आप सुसमाचार पर विश्वास करके यीशु के द्वारा माफी प्राप्त करते हो, उससे पहले आपका जीवन कैसा था, उस बात को लोगों को बताना है। लोगों को बातें सुनना अच्छा लगता है, खास करके दूसरों की बातें सुनना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति की बात में ऐसा कुछ होता है जो उसको सुनने वाले की बात के साथ जुड़ जाता है। जब आप किसी व्यक्ति को आपने सुसमाचार पर विश्वास किया उससे पहले की बात बताओगे, तब उनके जीवन का कुछ विवरण लगभग एक जैसा होगा, या तो आपकी बात के साथ जुड़े ऐसे बहुत सारे विवरण उनके जीवन में भी होंगे। दूसरा, उनको बताओ कि क्यों सुसमाचार सुनकर और उस पर विश्वास करके आपके जीवन में नया मोड़ आया है। सामान्य तौर पर यह बात हमारे पापों की माफी के साथ जुड़ी हुई होती है। हमने खुद के साथ या तो दूसरे लोगों के साथ गलत कार्य किए हैं, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं और हमें उद्धार प्राप्त करने का प्रस्ताव देते हैं। उसके बाद जैसे परमेश्वर ने शुरुआत से इच्छा रखी थी, वैसे ही हमें माफी प्राप्त हो और हम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन प्राप्त कर सकें, इसके लिए कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज दिया, उस बात को बताओ। तीसरा, सुसमाचार पर विश्वास करने से और माफी प्राप्त करने से आपके जीवन में कैसी असर हुई है, यह बात लोगों को बताओ। उनसे कहो कि परमेश्वर की माफी, प्रेम और अनंत जीवन को जानना क्या है। उनसे कहो कि उससे आप खुद कौन हो और क्यों इस पृथ्वी पर हो, इसके विषय में आपकी सोच कैसे बदल गई है। उनसे कहो कि सुसमाचार का अंगीकार करने से आप कैसे बदल गए हो। कुछ लोग रूपांतर पाए हुए हृदय का प्रमाण या सबूत मांगेंगे, यह स्वाभाविक है और यीशु का अनुसरण करने का मौका है। यह तो पवित्र जीवन जीने के कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण है। यीशु ने लोगों से प्रेम किया और उनकी सेवा की। हरेक लोग दूसरे लोगों से प्रेम और विश्वसनीयता की इच्छा रखते हैं। यीशु लोगों को जैसा प्रतिभाव देते हैं वैसा प्रतिभाव देना जरूरी है। लोग ऐसे प्रतिभाव को देखेंगे। कोई व्यक्ति उनसे प्रेम रखता है या नहीं उसको वे लोग जानेंगे। सबने यीशु पर विश्वास किया नहीं था, इसलिए जब आप सुसमाचार देंगे और उनके साथ यीशु मसीह जैसा व्यवहार करोगे तब भी सब लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर कुछ ही लोग विश्वास करेंगे।